ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरुभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण।
ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं?
कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं कि परमात्मा इस तत्व ज्ञान को देने के लिए स्वयं ही इस धरातल पर आते हैं और अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। तो यहां अब ये कलयुग का जो समय आ गया है, ये पीक टाइम है, ये प्राइम टाइम है या बिचली पीटी है। और परमात्मा ने कहा था धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की तबार ना जाई। सार शब्द एक तो मूल ज्ञान है, ये मूल ज्ञान जो दास आपको बता रहा है ये तत्व ज्ञान है दिया हुआ कबीर भगवान का। दास तो एक ऐसे टेप रिकॉर्डर है और उसका भेजा हुआ दास है, उसका कुत्ता है, आप उसके बच्चे हो, आप धनी हो, आप धनियों की हानि हो रही है, चोर लगे हुए हैं क्योंकि आप सतभक्ति ना करके नकलियां के फंसे हुए हो, इसलिए आपको भौंक भौंक कर जगा रहा है कि संभलो, जागो, तुम्हारी चोरी हो रही है, तुम्हारा अनमोल धन नष्ट हो रहा है। अब जो पुण्यात्मा होते हैं वो कुत्ते की आवाज को सुनकर धनी होते हैं, वो अवश्य जागते हैं। निर्धन तो पड़ा रहा, घर ने सोचा, उतने सोचा दो थाली फड़ी है, ठा ले जाएगा, को ठाओगा था सोवन ठाठते। और जो धनी होते हैं वो अवश्य फड़कते हैं, यानी जो पुण्यकर्मी प्राणी है वो कहीं भी नकलियों के फंसे हैं वो अवश्य फड़क रहे हैं इस दास की आवाज को सुनकर, क्योंकि ये सत्य पर आधारित है, वो केवल निराधार कथाएं सुना रहे हैं वो दूसरे नकली पंथ और संत। तो पुण्यात्मा अब वो समय आ गया है, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि एक समय आएगा धर्मदास, पूरे विश्व में मेरा ही ज्ञान रहेगा और पूरे मेरे बच्चे मेरे को पहचानेंगे और मेरी शरण में आवेंगे, सतनाम का नाम लेकर के सतलोक जाएंगे। वो दो अक्षर का मंत्र है सतनाम। इस सतनाम को देने का इस विश्व में कोई अधिकारी नहीं है पुण्यात्मा और इस दास के अतिरिक्त। यह अभिमान ना समझना, ये तत्व ज्ञान समझना, यानी सच्चा ज्ञान समझना। तो उस परमात्मा ने दास को आकर के स्पेशल कहा कि बेटा कर दे शुरू। सन 1997 में इस दास को परमात्मा आकर मिले और कहा कि अब यह समय आ गया है, अब खोल दे इस पिटारे को, भंडारे को, और तेरे साथ रहूंगा, चिंतित मत होना। तो उसी का परिणाम है, उन्हीं का आशीर्वाद है, मेरे पूज्य गुरुदेव जी की रजा है कि ये दास उस परमात्मा के संदेश को उसके बच्चों तक पहुंचाने में सफल हुआ। कठिनाई बहुत उठाई, क्रोथाकांड इसी का परिणाम था, क्योंकि परमात्मा के बच्चे हैं सभी जो हमारा विरोध कर रहे हैं वो भी उसी के बच्चे हैं, लेकिन वो काल का फंस गए, काल ने उनको अपना हथियार बना लिया, नकली आचार्यों को, गुरुओं को, लेकिन समर्थ के सामने इन नकलियों की पारी बसावे को ने अपने कर्म बिगाड़े, कर्म खराब कर लिए उन लोगों ने और ये पाप के भागी बन गए। जो ये ज्ञान और दो वर्ष पहले जनता तक पहुंचना था वो दो वर्ष की बाधा उन्हें पैदा कर दी। और इतना दूर कर दिया समाज को मुझे इस दास के बारे में अफवाहें फैलवाकर मीडिया का भी सहयोग लेकर के। और काल का उद्देश्य ये था कि लोग इसे इतनी नफरत करें, नाम से भी नफरत हो जाए, अगर कोई वहां पहुंचे नहीं, कहीं काल की पोल ना खुल जाए अज्ञान की। लेकिन समर्थ का आदेश और समर्थ का बनाया हुआ ये विधान, इसके बीच में जो अवरोध पैदा करता है वो महामूर्ख और अंधे गधे जैसा होगा। जैसे रेल की मार्ग पर अंधा गधा खड़ा होकर के और अवरोध पैदा करने की चेष्टा करता है तो उसकी कितनी समझदारी है, क्योंकि उसके आंख कोने और उसमें बुद्धि नहीं। जैसे ट्रेन आ रही हो, एक अंधा गधा खड़ा था रेल की पटरी पे और गाड़ी आ रही थी, उसने देखा जिस दिशा से कोई डिस्टरबेंस लगी, खड़खड़खड़ की आवाज आई, उसने उसी साइड में अपने पिछले पैर कर लिए, अकाने दे मुझे कौन डिस्टर्ब करेगा, दोनों दुलत्ती पहना ली। जब वो रेल ट्रेन निकट आई, दोनों ठोकी उसने, तो वो ठाक भगा दिया, टुकड़े टुकड़े हो गया। तो पुण्यात्माओं, इस परमात्मा का मार्ग है ये, उस समर्थ का चला हुआ ये मार्ग है। इस मार्ग में जो अवरोध पैदा करेगा वो हिरण्यकशिपु की कैटेगरी में आएगा, वो कंस की कैटेगरी में हो। पहले तो हमने गलतियां कर ली बहुत, लेकिन अब उन उदाहरणों से सतर्क होना पड़ेगा और ये ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा। एक बार पुनः, अब तो आग लगी पड़ी है, कलयुग घोर दिखाई देता है। किसी मजहब धर्म के पुण्यात्मा भक्ति भी करते और मांस खाते, बीड़ी पीते, शराब पीते, और किसी उसके रिश्वत की आंट नहीं, माया जोड़न की होड़ लगी, तो ये तो घोर कलयुग की अब झलक झांकी आप देख रहे। अब एकदम पुनः शांति होगी पूरे विश्व में, इतने प्यार से रहा करेंगे, इन कोठी और बंगले बनाने की होड़ खत्म हो जाएगी, ज्ञान से हो जाएगी। जैसे एक बैंक मैनेजर था, जब दास ने ये नाम लिया ही लिया था, उसने बैंक से कुछ लोन लिया और रोहतक के अंदर एक सेक्टर वन में कोठी गाड़ी 3.5 लाख रुपए उस टाइम में, आज तो 40 लाख रुपए बने हुआ, बल्कि और ज्यादा 50-1 करोड़ में ऐसी कोठी बनाई। उसका मुहूर्त करने के लिए संडे का समय किसी पंडित पर जो भी समय था निर्धारित करवाया। अब हम इसी मुहूर्त कराया करते, पहले तो पंडित ने कर लेने दो, थोड़ी बहुत जटर मटर यू, फिर बाद में गुटी घाटी दर्शन मनावांगे, ये थी मुहूर्त मारी, इतना ज्ञान रह गया था। अब उसने सब मित्र प्यारे फ्रेंड इकट्ठे कर रखे, रिश्तेदार आए हुए थे, और कुछ उस किसी आइटम की आवश्यकता पड़गी, स्वयं स्कूटर उठाकर और वो सामान लेने के लिए जा रहा था बाजार में। मेडिकल मोड के ऊपर एक स्कूटर से स्कूटर टकरा गया, टू व्हीलर से टू व्हीलर, और पड़ गया, पड़ते ही कनपटी लागी फुटपाथ पे, वहीं पर मृत्यु होगी। अब चाट ले उसको ठीने, वो दरा दरा रहेगा, जश्न मनाऊंगा। अब जो सा काम इस मनुष्य जीवन से करना था उसने तो वो तो छोड़ दिया, इन बकवादा में दौड़ लिए। क्यों दौड़ दिए? क्योंकि हमने माहौल ऐसा बना लिया, अध्यात्म ज्ञान के आधार से हम यहाँ इस साइड पकड़ गए, दूसरी स्पीड पकड़नी थी, भगवान की भक्ति करनी थी, एक मकान ठीक अपना बना ले, ठीक सा गर्मी सर्दी से बचने के लिए, तो इसलिए बना था कि भक्ति में बाधा करती है प्राकृतिक यहाँ की आपदाएं, कभी गर्मी घनी, कभी सर्दी, कभी वर्षा आ गई, कहीं ओले गिर गए, तो उससे बचकर भक्ति करने में डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए झोपड़ी झाफड़ी डालकर अपना टाइम पास करना था। अब जैसे क्योंकि वो बातें पहले तो असर कर रही थी, जो नाम लेने के बाद तो कति कलेजे में लग गए ये बातें, सचमुच यू के सांग हो। जब दास ने ये मार्ग प्रारंभ किया था, आदेश हुआ था गुरुदेव, तो हमारे पास इतनी सुविधा नहीं थी। एक भक्तों ने एक जीप लेनी थी लोन पे, तो उसका फाइनेंस करवाया, करोत्तक के अंदर एक व्यक्ति था वो फाइनेंस करता था, उसने फाइनेंस कर दिया और ब्याज सबसे ज्यादा लेता था, उधर लेते ही सभी लेते ज्ञान बिना। तो हमारा भक्त बता रहा था कि मैं चर्चा चल पड़ी कि आप किसके चेले हो, हमसे बोला, हमने बताया आपका नाम कबीर साहब के पंथी हैं, रामपाल महाराज के हम शिष्य हैं, और हमने भक्त कह रहे थे, हमने भी उसके पिताजी बैठे थे ऑफिस में, तब तक हम इंतजार कर रहे थे उस लोन करने वाले उसके पुत्र की इंतजार कर रहे थे उसके ऑफिस में बैठ के। तो उसके पिताजी से कहा कि आप भी भक्ति करो, नाम ले लो हमारे गुरुजी से। तो उनका पिता कहता है मेरी तो मौज हो रही है, भगवान शंकर की पूजा करो, माता की पूजा करते हैं और गुरु हमने बना रखे हैं अपने और भगवान विष्णु के हम पुजारी हैं, सब काम हम ठीक करते हैं, मूर्ति मारति ला रखी। और क्या कह रहा है कि मेरे जैसा सुखी आज कोई नहीं, इन भगवानों ने कर रखे, इन देवताओं की तरफ संकेत करे, मूर्ति लग रही ऑफिस में। और क्या बताता है कि एक बेटा तो ये फाइनेंसर है, इसके खूब दया हो रही है, इनकम होती है, और एक बेटा जज लग गया है, बेटे का अभी विवाह हुआ है, उसकी पत्नी भी जज है। बताओ मैं किसका नाम ले लो, इन गुरुवान ने इन भगवानों को छोड़कर आप क्या बात करते हो। हमारे भक्तों का कहने का फर्ज था बाकी बहस कौन करे इनके साथ, ये तो काल के वकील हैं सभी। अब एक वर्ष के बाद समाचार पत्रों में क्या आया कि वही परिवार जिसे ये फाइनेंस कराते थे, दास को इन्होंने आकर बताया था कि ऐसे ऐसे हमने कही, लेकिन ये तो इस माया के पुजारी मानते नहीं, उसके पिताजी से कहा था, वो न्यू बोला तुम्हारे जैसा सुखी कोई नहीं और हम किसकी पूजा करें। उन्होंने कोई धार्मिक अनुष्ठान करवाया था, समाचार पत्रों में सच्चाई थी या जो दास बता रहा है, धार्मिक अनुष्ठान कराया था। धार्मिक अनुष्ठान के बाद जैसे फूल फाल चढ़ाते हैं, कोई अवन की राख रूख बच जाती है उसको आदर के साथ जल प्रवाह करते हैं। अब वो समागम हो लिया, पहले दिन अनुष्ठान करवाया था हवन होन उनके गुरुजी ने कराया था, और अगले दिन उस हवन की उस राख को फूलों को उठा करके वो दोनों भाई जज और वो फाइनेंसर इधर दिल्ली रोड के ऊपर एक JLN है जवाहरलाल नेहरू कैनाल, उसमें पानी बहुत चलता है, उसमें चले गए। ड्राइवर उनके साथ था उन फूलों को जल प्रवाह करने के लिए। अब जो ही उन्होंने जल प्रवाह के लिए फूल फेंके तो वो स्लोप ज्यादा है ऐसे उस दरिया उस नहर का कैनाल का, वो ऊपर पटरी पर गिर गए। अब उसने सोचा कि ले थोड़ा सा इनको नीचे सरका देता हूं। अच्छे एक भाई ने हाथ पकड़ लिया, एक नीचे को होकर सरकाने लगा, उसका काई लगी हुई थी, पानी कुछ डाउन हुआ था, पैर फिसल गया। वो दूसरा भाई भी साथ में और वो भी तिरना कोई से नाव नहीं, दोनों मर गए डूब गए। वो जज भी मर गया और वो फाइनेंसर भी मर गया। पेपर में आई, ड्राइवर खड़ा खड़ा देख रहा, उसने फोन किया, इकट्ठे हुए। तीसरा दिन लाश मिली थी वहां शालावास पंप हाउस पर जाके। अपने आत्माओं देखो, परमात्मा हमें आगाह कराते हैं कि जब तक तुम्हारे पुण्य चलते हैं पूर्व जन्म के, आपकी पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज है, तो आपको सब सुविधाएं प्राप्त रहेंगी, चाहे आप किसी की पूजा करो चाहे ना करो। यानी सत भक्ति ना करके अन्य चाहे पूजा करो चाहे ना करो, और आप ये सोचते रहते हो कि जो साधनाएं हम कर रहे हैं इससे हमें ये पुण्य हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब उन्हीं साधनाओं को करने से वो ये मान रहे थे हमारे सर्व सुख हुए हैं और उस समय नाश हो गया उनके करते करते, तो खाक साधना थी वो। अब वो जो नया नया विवाह हुआ था और लड़की चली गई, जो उसकी पत्नी थी उसने कहीं और मैरिज कर ली, अब हो गए जैसे के तैसे। तो पुण्यात्माओं जो काम करना चाहिए था वो तो छेड़ा भी कोना, वो तो स्टार्ट भी नहीं किया। तो अब इस सत्संग से आपके अंदर प्रेरणा होगी, क्योंकि भगवान का आदेश है ये, आप उसके बच्चे हो या भ्रम रहे हो भटक रहे हो, आपने जाना था सतलोक में धक्के खाओ इस दिन के, इन स्वर्ग तक मुश्किल से पहुंचा जाता है, फिर वापस यहीं आ रहे हैं। अब परमात्मा बताया करते थे हमें, क्यों भूली घरे अपना ये ना देश तुम्हारी, फिर पीछे पछतावगी कर ले सोच विचार, बिन सत गुरु पावे नहीं घर अपने की राह, संतों शरण लाग कर सोरत शब्द समा। संख्य असंखों कोस है तेरे पिया का देश, एक पलक में पाइए ले सतगुरु उपदेश। सोन सलैली गैल है गगन मंडल के माही, बिना प्रेम पावे नहीं चाहे क्रोड़ समाधि ला। नितानंद लो लायक चढ़ो मैल मंजर, फेर न भव जल आइये ये सपना संसार। होले सुहागण सुरता त्यारे मालिक गिर जाना है तू तो, होले सुहागण सुरता त्यारे मालिक गिर जाना है तू तो, होले सुहागण सुरता त्यारे मालिक गिर जाना है। तेरा सुन शखर बर तारे मालिक गिर जाना है, तेरा सुन शखर बर तारे मालिक गिर जाना है तू तो, होले सुहागण सुरता त्यारे। नाले दोले ओड पैर लेकर सोला सिंगार, नाले दोले ओड पैर लेकर सोला सिंगार, आज नहीं तय तड़के परसों आवेंगे तेरे लनियार। मालिक गिर जान है तू तो, होले सुहागण सुरता त्यार है तेरा, सुन शखर बर तार मालिक गिर जान। तेरे साथ किए कितनी जाली तू क्यों लारी वार, तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार, गुड़िया खेलत जन्म गवाया लाया है नहीं विचारे। मालिक गिर जान है तू तो, होले सुहागण सुरता चारे है तेरा, सुन शखर बर तारे मालिक गिर जान। सतगुरु मारे बाणिया है करते बणज व्यवहार, सतगुरु मारे बाणिया है करते बणज व्यवहार, बिन डांडी बिन पालड़े है तोले दिया संसार। मालिक गर जान होले, होले सुहागण सुरता त्यारे मालिक गर, ए तेरा सुन शखर बर तारे मालिक गिर जाना है, तेरा सुन शखर सुन शखर मैं सेज पिया की आस आस कर ले प्यार, सुन शखर मई सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार, कहे कबीर सुनो मेरी सजनी वहां लूटो है अजब बहार। मालिक गर जान होले, होले सुहागण सुरता त्यार मालिक गर, तेरा सुन शखर बर तार। हे सुन शिखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार, सुन शिखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार, कहे कबीर सुनो मेरी सजनी वहां लूटो है अजब बहार। मालिक गिर जाना है होले, होले सुहागण सुरता चारे जाना है तेरा, सुन शिखर बर तारे मालिक गिर जान है तेरा सुन शिखर बर तार मालिक गिर जान है। अब परमात्मा ने क्या बताया है, इस आत्मा को ना जाने कितने प्रकार से ऐसे झंझेड़ने की चेष्टा की है, ना जाने कितने प्रकार का ज्ञान देना चाहा है। पुणात्मा जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती है और उसको निकालने के लिए हुक होते हैं, कांटे बोल रहे हैं उसको, हुक से बना करके ऐसे उल्टे सुलटे से और 20-25 कट्ठे ही जुगाड़ कर दिया जाता है, उनका एक कड़े में लपेट दिए जाते हैं, रस्सा बांध कर वो कुएं से निकालने के प्रयत्न किया जाता है। बाल्टी तो वो एक एक हुक में उलझ सकती है, एक से एक ही पर्याप्त था, लेकिन नहीं, इसलिए उल्टे कई डालने पड़ते, ना जाने कौन से में उलझ जावा, एक तक पासे घूमता रहा है। तो परमात्मा ने हमें जगाने के लिए, तत्व ज्ञान से चिपकाने के लिए, हर काल के इस कुएं से निकालने के लिए, परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, इतनी बाणी बोल दी और जितना बाड़ू रेत, अरिस भूले जीव के एक निहारी हेत। क्या बताते हैं, पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने नहीं सुनिया। तो ये इतनी बाणी इसलिए बोली है, ना जाने कौन सी खटक जा किसके और वो उड़ जा माल्य के कांटे में और निकल जा इस कुएं से, निकल जा इस चेहरे से। तो इस प्रकार परमात्मा बताना चाह रहे हैं, ये एक आत्मा सुरता को या आत्मा कहा है और इसको समझाने की चेष्टा की है कि होले सुहागण सुरता त्यार तन मालिक घर जाना है। हमार हम सबका स्वामी, हम सबका धनी, हम सबका खसम, यानी एक ही है, मालिक कहो, पति कहो, स्वामी कहो या भगवान कहो, तो वो एक ही है। अब इस आत्मा को ये कह रहे हैं परमात्मा अपनी ही महिमा एक डबल रोल करके हम तक बता रहे। वैसे तो परमात्मा ने बहुत, कबीर परमेश्वर जी ने कई बार कहा कि आई एम गॉड, हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गौस और पीर, यानी हर तरह के, जैसे कोई साधु रूप में, पीर रूप में, पैगंबर यानी संदेश वाहक तत्वदर्शी संत जगत गुरु बनकर मैं ही आता हूँ, और हम ही अलख अल्लाह हैं और कुतुब गौस और पीर, गरीब दास खालिक धनी मेरा नाम कबीर, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि मेरे तीर, दास गरीब अधर बसु में अवगत सत्य कबीर, मैं सतलोक में रहता हूँ ऊपर और वहां से चलकर आता हूँ आपके लिए, गोता मारू स्वर्ग में जा बैठू पाताल, कह कबीर ढूंढता फेरू अपने हीरे मोती लाल। तो अब यदि भगवान बार बार कहते मैं भगवान हूं तो कोई नहीं सुनता उनकी बात ने, इसलिए उन्होंने अपने आप को एक दास बताया और हमारे लिए उदाहरण दिया कि यहां यदि किसी ने अभिमान किया वो भगवान प्राप्ति नहीं कर सका, ना कर सकेगा, इसलिए अपने आप को दास बोला और हमारे लिए उदाहरण दिया कि तुम भी बच्चों ऐसे ही रहना, यहां जीव का कोई अस्तित्व नहीं है। कहते मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, कंस के सीताणूर से वो हिरणा कुश बलवीर, तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म दर लेत, गरीब दास एक नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। तो कहते मर्द गर्द में मिल गए वो धरती तोले थे, बिरन मट्टी को प्राप्त हुए गधे की योनि भोग रहे हैं, तो यहाँ तो दास बनकर है, सबसे किसी को दुखी नहीं करे, मन कर्म वचन से भी किसी को पीड़ा देने की चेष्टा भूल कर नहीं करना, आपकी भक्ति हीनता हो जाएगी, भगवान आपसे नाराज हो जाएगा। तो धीरे धीरे हमने उतना शिष्ट बनना है जितना भगवान को हम पसंद हों, तो उसी के लिए यहाँ क्या बताया है। अब क्या बताते हैं परमात्मा, तेरा सुन शिखर में, सुन शिखर में, सुन माने सबसे वो कम प्लेस जहां और अन्य वस्तु ना हो, उस सुन के पार करके उसके शिखर में, उसकी टॉप में, वहां तेरा पति रहता है, यानी तेरा मालिक है, वो सतपुरुष है। और वो परमात्मा स्वयं कहते हैं, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि मेरे तीर, दास गरीब अधर ऊपर, अधर बसू ऊपर रहता हूं सबसे टॉप मोस्ट प्लेस पे, और हम अवगत सत कबीर। तो यहां परमात्मा उसी तरह संकेत कर रहे हैं कि नाले धोले ओढ़ पैर ले, अपना आत्मा सुहागण कौन होती है? जिस लड़की का विवाह हो गया, जिस लड़की का विवाह हो गया तो वह सुहागण हुई, और जिसका विवाह नहीं हुआ वो कुंवारी है। कुंवारी है तो अपने पति के घर वो जाएगी कैसे? वो तो कुंवारी है, अभी अपने पिता के घर पे ही है। तो हम जिन्होंने उपदेश प्राप्त हो गया, आप सब आत्माओं को जिनको दीक्षा मिल गई, तो आप सुहागण हो गए। अब जब लड़की का विवाह हो जाता है, विवाहित हो जाती है, तो पहले एक विशेष वो होता था, जैसे बच्चे को भेजने के लिए बहुत से आइटम तैयार करने पड़ते थे, और लड़की को भी चिंता हो जाती थी, अपने कपड़ों की कढ़ाई कुढ़ाई का वाला गिर रहा करती। तो क्या बताते हैं कि इस राम नाम के धन रूपी इस दहेज ने इकट्ठा कर ले, यो दहेज तू लेकर जागी और ये सब तेरे अंदर जैसे 16 श्रृंगार कर ले। कौन से 16 श्रृंगार? सील, संतोष, विवेक, अक्षमा, भाव भक्ति, दान का भाव बनना, इस तरह 16 प्रकार के एक साधक के। वैसे तो लड़कियों को 16 श्रृंगार कहे गए हैं, लेकिन भगत के जो श्रृंगार हैं वो कर ले, जिससे तू अपने पति को प्यारी लगे, यानी मांस शराब तम्बाकू ना खाना, आन उपासना नहीं करनी, और ये सील, संतोष, विवेक, दया भाव, नम्रता, एक बहुत अच्छा मृदु भाषा, इस तरह के जो आपके श्रृंगार हैं भक्त के, यदि आप इन श्रृंगारों से युक्त हैं तो भगवान को अच्छी लगोगे। ये उदाहरण दे रहे हैं। नाले धोले ओढ़ पैर ले, नाना धोना क्या है? सत्संग रूपी इस अमृत सरोवर में आत्मा के मैल तार ले, नाले धोले ओढ़ पैर ले, और कर 16 श्रृंगार, यानी सब मर्यादा में रहे, और आज नहीं तो कल परसों तेरे आवेंगे लणियार। ये देसी भाषा हरियाणा की, लगभग परमात्मा तो सब भाषाओं में ही बोला उन्होंने ज्ञान, ताकि मेरे बच्चे कहीं भी हैं वहीं पर समझ जाएं। लणिहार मीन तुझे लेने वाले तेरे पति आएंगे, यम के दूत समझ ले, यहां तो लणिहार यम के दूत हमारे, और वहां सतलोक चलोगे तो परमात्मा आएंगे इस दास के रूप में। कहते आज नहीं तो कल परसों, यानी एक दिन तो मृत्यु होनी ही है आपकी, यहां तो रहना ही नहीं किसी ने, तो चलने की तैयारी करनी पड़ेगी। जो सुहागण होगी, यानी जिन्होंने नाम ले लिया, गफलत नहीं करना, वो तो कभी भी आ सकते हैं लेने के लिए, अब तो हम प्राय हो गए हैं। तो इसके विषय में बताया है, तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वारे, गुड़िया खेलत जन्म गवाया तन लाया नहीं बेचारे। अपनात्मा पहले हम छोटे छोटे थे, जब हमारी बहनें बुआएं उनका उनकी ठीक दर दिया करते, ठीक निर्धारित समय कर देते थे ससुराल जाने का, तो उस ठीक से पहले वो क्या करती थी, अपने कपड़े करते थे 40 तीड़ अगलियां की, ये 20 तीड़ बार लिया की, तील बिन सेट, वो कपड़ों के सेट को तीड़ बोला करते, घाघरा व्याघरता भरा सा, उसमें जुगल कुर्ता है चुंदड़ी, वह तीड़ बोला करते कंप्लीट सेट को। तो वो टेलर आते थे वहां घर पे ही, उन कपड़ों को सील जाते थे तो टुकड़े बच जाते थे कपड़ों के। तो छोटी बहने जो होती थी, छोटी छोटी बालक, वो क्या करती थी, उन कपड़ों को उठा के और ऐसे ही तय करके और बना लेती थी, ये 20 अगलियां की, 12 पिछलियां की है, और उनको एक गठड़ी बांध कर छोटी सी पोटली में उसमें रख लेती, रोज खेलने के समय निकाल लेती एक एक न एक, या अगलियां की या पिछलियां की। और कोई भाई या दूसरी बहन उसके उस चीथड़े ने, उस कातर इतनी कतर ने, लील ने कोई निकाल लेता वह गिनती ना पाई 40 तक, तो रोवर पा पीटा, है इसने मेरी तीड़ निकाल ली, हाय मेरी तीड़ निकाल ली। अब वो रोवर बुरी तरह, उन्हें पूछा क्या हो गया कि मेरी तीड़ निकाल ली, इतनी थी एक कम पाई, इसने का निकाल ली, वो फिर वापस दे दे तो वह राजी हो जाए। तो ये खेल थे। और जब वह बच्ची बड़ी हो जा, गुड़िया खेला करती, एक गुड्डा एक गुड़िया बना लेती थी चीथड़ों के, फिर उनका ब्याह करती और फिर उसका सातवा गठड़ी सरपद रखा चालीप तो ससुराल चाल है, यानी इस तरह खेला करती थी। तो फिर जब वो लड़की बड़ी हो जाती है, सियानी हो जाती है, और फिर उसको ओरिजिनल तील यानी वो सेट ऑफ सूट, वो ओरिजिनल तील मिलती और ओरिजिनल पति दुल्ला मिलता, तो फिर वो लड़की क्या उन गुड्डा गुड़िया वाले खेल खेल सकती है? क्योंकि उसको ज्ञान हो गया ओरिजिनल वस्तु का, फिर वो उन दीथड़ों के साथ कभी नहीं खेल सकती। तो अभी तक हम जो भी इस संसारिक सुख को कलेक्शन करने में लाग रहे हैं, कार हो, कोठी हो, बुड्ढा है, पता नहीं पंखे हो, कूलर हो, फलाना हो, जैसा भी, और इसी खेल को खेलते खेलते हम मर जाते। और जब हम इस तत्व ज्ञान से परिचित होकर स्याणे हो जाएंगे, फिर हमने उस गुड़िया वाला खेल दिखाई देगा। जब वो लड़की बड़ी होती है, फिर अन्य बच्चे जब खेलते हैं उनको बालक दिखाई देते हैं, एक बालक से ये कोई तीर थोड़ी, तीर था अब मिली मुझे पति, तो अब मिला असली गुड्डा। तो पुणात्माओं, अब आप इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि गुड़िया खेल तन जन्म गंवा दिया, लाया नहीं बेचार, ये संसारिक सुविधाएं यही इकट्ठी करके मृत्यु हो जाती है और यही छोड़ जाते हो, कोठी बनाई और एक दिन भी धारण पाया, मृत्यु होगी, चल 10-20 दिन या साल, 2 साल 10 साल उसमें रह भी लिया तो क्या काम आई, मृत्यु होगी। मृत्यु होती है सतभक्ति ना करने से, वो कुत्ता बनकर उस गली में बैठता उसको ठीक ही छाया में, और आते जाते मारन लठे हो गया, फिर वो काम सारा बिगड़ गया। अब क्या बताते हैं, सतगुरु मारे बहानिया है करते बणज व्यवहार, बिन डांडी बिन पालड़े यो तोल दिया संसारे। हमारे सतगुरु बिजनेसमैन है, बानिया मीन बिजनेसमैन, आत्मा का सौदा करते हैं और बगैर किसी डांडी यानी बगैर किसी तराजू के पूरे विश्व को तोल दिया, सबके ज्ञान को दिखा दिया इनका कितना ज्ञान है, बिन डांडी और बिन पालड़ा यो तोल दिया संसार। इस तत्व ज्ञान से माफ कदर दिया, किसकी कितनी सची थी है, किसकी कितनी वैल्यू और वजन है। सुन शिखर में सेज पिया की वो हंस हंस कर ले प्यारे, कहे कबीर सुनो मेरी सजनी लूटो वो अजब बहारे। के जिस सुख को आप यहां खोज रहे हो, नमक की बोरी में मिष्ठान ढूंढ रहे हो, ये कभी नहीं हो सकता, ये भूल जाना। यहाँ के स्वर्ग में भी सुख नहीं है, जिसको सुख कहते हैं ये झूठा सुख है, अस्थाई सटे है सबका, और वहां स्थाई सटे होगा। अपुनात्मा हमारे पवित्र सदग्रंथ क्या ज्ञान देते हैं, और परमात्मा ने वही ज्ञान बताया था। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द से दूर रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। अब सुख सागर परमात्मा कहते हैं, इस नमक की बोरी तो निकलो और फिर तुमने देखो, परमात्मा ने करने नो दीदार महल में प्यारा एक शब्द है परमेश्वर कबीर जी का, उसमें सारा कुछ बताया है सतलोक का, और लास्ट में ये बता दिया ये उस सतलोक की नकल कर रखी है, ये डुप्लीकेट बना रखे इस काल ने अपनी माया के द्वारा। ब्रह्मलोक के अंदर एक नकली सतलोक, नकली अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक, उसकी फोटोकॉपी कर रखी है, पर वो वस्तु वो नहीं है। तो ये बूरा की बोरी में और नमक की बोरी में कोई अंतर नहीं होता जब तक टेस्ट ना कर ले, टेस्ट करने से जानकारी होती है। तो दोनों एक जैसी लगती है जब पास पास रख दे जाए थे। तो ऐसे ही इस काल का लोक तो नमक की बोरी है और सतलोक वो सुख सागर यानी पूरी उस बोरी में मीठा ही मीठा होता है। तो पुणात्माओं परमात्मा कहते हैं कि चल तू चल रे सुख के सागर। अपुणात्माओं जैसे आज का प्रसंग चला था कि ये संसार यहाँ का जो सुख है, यहाँ सुख नहीं है और यहाँ सथाई कोई भी जीव नहीं है, आज या मनुष्य जीवन में चाहे कोई राजा बना है, एक मिनट में मृत्यु हुई, फिर चलो स्वर्ग में थोड़ा बहुत समय बचा हुआ होता, फिर गधा बनो, फिर नरक चलो चलते, यह सथाई सथा नहीं है। और यहाँ के भगवान भी यही कहते हैं, जैसे यहाँ का भगवान, यहाँ का ये काल प्रभु है, ब्रह्म है, सर्वपुरुष है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, श्रीमद भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये अपनी स्थिति बता रहा है। अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है, सर्वपुरुष बोलता है और कह रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तुझे पता नहीं, तुझे ज्ञान नहीं, मुझे जानकारी है, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। फिर इसने अपनी साधना बताई है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण मामनु समरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, एक अक्षर ओम है, नथिंग एल्स। ये अरे राम 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 हरे हरे, श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे श्याम सीताराम राधे राधे श्याम राधे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, ये गायत्री मंत्र, ये मोक्ष मार्ग के मंत्र नहीं है, ये व्यर्थ है, यूजलेस है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट किया कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमान्य आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं जाप करते हैं, उनको न तो सुख होगा, ना कोई गति होगी, ना उनकी कोई उनको सिद्धि प्राप्त होगी, अर्थात यूजलेस। इसलिए 16वें अध्याय के फिर 24वें श्लोक में स्पष्ट किया गीता जी में, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी त्याग देनी चाहिए, सदग्रंथों को आधार मानना, किसी के लोक वेद पर आधारित मत होना। तो श्रीमद् भगवद् गीता हमारा आधार है भक्ति का, पवित्र वेद हमारा आधार है भक्ति का, साधना का, लेकिन पुराण हमारे सहयोगी है अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए। और जो पुराणों के अंदर वेदों और गीता वाला भक्ति विधि है वो तो वेदों और गीता का ही है, वो तो हम उन्हीं से ग्रहण करेंगे, बाकी अन्य उसके अंदर उस ऋषि वक्ता पुराण के वक्ता का अपने घर का ज्ञान है जो वेदों और गीता से नहीं मिलता, वो हमने स्वीकार नहीं करना। अब गीता ज्ञानदाता कहता मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और कोई जाप ही नहीं है, इसके अतिरिक्त कोई मंत्र जाप करता वो अपने डड़े ढो रहा है, वो कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहा है, लाल नहीं है, ये ब्रह्म सत्र का है। और इससे जो इसकी साधना करता हुआ अंत समय में शरीर छोड़कर जाता है तो परम गति को प्राप्त होता है। वो परम गति कौन सी है? ब्रह्म लोक से मिलने वाला स्थान ब्रह्म लोक। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में कहा कि ब्रह्म लोक पर्यंत वहां तक गए हुए सभी पुनरावृत्ति के अंदर है, उनका भी जन्म मृत्यु बना ही रहता है। ये खुद कहता है ब्रह्म, गीता श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता ज्ञानदाता बोल रहा है कि मेरा कौम अक्षर है और तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके अर्जुन, हम अविनाशी नहीं है। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को भी अनूतम बताता है, अनूतम यानी गति व्यर्थ, क्योंकि जन्म मृत्यु मिटे नहीं, और जब तक जन्म मृत्यु का रोग नहीं कटेगा तो सुख हो नहीं सकता, शांति नहीं हो सकती। शांति तो सतलोक में होगी जहां सुख ही सुख है, दूसरी वस्तु ही नहीं है। अब इसलिए उसने अपनी साधना को अनूतम बताया है। और ये नकली गुरु, ये आचार्य, ये हमारे बाग में लिखे थे, इन्हें बैठा बैठा दिया। और ये क्या कहते हैं, इनसे कोई पूछता है कि अनूतम माने क्या होता है स्वामी जी, कि अनुत्तम दो घटिया और उत्तम, और उत्तम उत्तम लाचा। और फिर जब उनसे पूछते हैं कि गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को अनुत्तम क्यों कह रहा है, अरे अरे तू समझा नहीं, अनुत्तम माने जिससे उत्तम और ना हो। अरे फूटे वाग धरे, अब ज्ञानी नथाए नहीं, इन्हें सट्टे मारेंगे फिर ये। अब जैसे एक उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण माने सफल, अनुत्तीर्ण माने फेल। अब किसी बच्चे के पीछे लिख दिया रिजल्ट में अनुत्तीर्ण, और वो नौका है घर जाके कि ना अनुतीर्ण का अर्थ होता सब तो पास जिसका बराबर कोई पास है ना हो तो बकाले वैसे लेकिन वहां लिखा ना पावे तुम्हारा अगली क्लास में। तो ये नकली गुरु न्यू बतावे और कुछ नौके हैं कि भाई अनुत्तम माने जिससे श्रेष्ठ कोई ना हो। अरे भले पुरुषो यदि गीता ज्ञान दाता कहते समाज के अंदर ऐसा होता समाज के अंदर ऐसे होता। अरे सीधा ज्ञान इसमें समाज के आ गया। गीता ज्ञान दाता कहता है कि मैं मेरा एक ओम नाम है और मेरी साधना करने वाला ब्रह्म लोक में जाता है। गीता जी में स्पष्ट आठ में जाके 16वें श्लोक में ब्रह्म लोक पर्यंत भी गए हुए वापस आते हैं जन्म मृत्यु होती है। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता जी में कहा कि यह मेरी गति भी अनुत्तम है ये घटिया है व्यर्थ है क्योंकि ये पुण्यात्मा जो नेक आत्मा ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी परमात्मा प्राप्ति के लिए यत्नशील है लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम घटिया गति में ही स्थित है। इसलिए तो उसने कहा कि 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 तक और 16-17 में श्लोकों में और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया है कि संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष है। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा समझो नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु रूपी शाखा है। जो संत इन सभी विभागों को बता देगा वो तत्वदर्शी संत है। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि जिस तत्व ज्ञान के बारे में सचिदानंद गण ब्रह्म की वाणी में 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा गया है कि वो सचिदानंद गण ब्रह्म की वाणी में ब्रह्म ने मुखे उसके परमात्मा के मुख कमल से उच्चारित वाणी कबीर वाणी में जो विस्तार के साथ धार्मिक अनुष्ठानों का ज्ञान दिया गया है यज्ञों का वो तत्व ज्ञान है। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ वो तत्वदर्शी संत तुझे बताएंगे। अब तत्वदर्शी संत की पहचान बताइए 15वें अध्याय के 1 श्लोक में गीता जी के उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग जो बता देगा सह वेदवित वो तत्वदर्शी संत है उससे पूछो। अब ये तत्वदर्शी जगत गुरु अब जैसे सेवक होके उतरे इस पृथ्वी के मां और जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बली जाऊं जीव उद्धार करने के लिए वो कबीर परमात्मा वो जगत गुरु बनकर तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए यहाँ आए और 120 वर्ष तक रहे सह शरीर आए सह शरीर चले गए। तो यहाँ क्या बताते हैं कि तत्वदर्शी संत कौन होगा जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स बता देगा विभाग बतावेगा। तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले उस सचिदानंद गणब्रह्म की वाणी में ये भाग बता रखे थे। कबीर अक्सर पुरुष एक पेड़ है सर पुरुष वाकी डारे ये तीनों देवा शाखा है भाई पात रूप संसारे। कख नहीं पता था गीता ज्ञानदाता ने भी सिर्फ ऑप्शन छोड़ दिया ऊपर को जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। अब इसके बारे में कंप्लीट ज्ञान दो तत्वदर्शी संत देगा उससे पूछो। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले दे रखा था ज्ञान लेकिन नकली आचार्यों ने गुरुओं ने हमारे तक आन नहीं दिया हमारे को दूर रखा अपने भगवान से मिसगाइड करते रहे। कबीर तो जुलाह है धानक है इसने सदग्रंथों को कैसे जाना इसको इसने संस्कृत पढ़ना नहीं आता केवल ब्राह्मण लोग ही संस्कृत के पढ़ने के अधिकारी थे उसने। तो हमने यह बात इनकी मान ली झूठों की कि अभी सचमुच कबीर साहब तो जुलाहे थे धानक थे और ये पढ़े नहीं होंगे। आज पता चला वो तो पढ़े पढ़ाए थे उन्हें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी वो तो परमात्मा थे सब भाषा के ज्ञाता थे उनकी रची हुई सृष्टि थी उनका दिया हुआ विधान था उनको कंठस्थ याद है तो मालिक है। अब उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष की परमात्मा ने बता दिया अक्सर पुरुष एक पेड़ है निरंजन यानी सरपुरुष या की डार और तीनों देवा शाखा है ये पात्र रूप संसार। एक बार झलक देख लो इसकी श्रीमद भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 और 16 और 17 का ये निष्कर्ष है, ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। अब जैसे जड़ परोक्ष होती हैं, गुप्त होती हैं, पृथ्वी से बाहर इतना हिस्सा दिखाई देता है वृक्ष का, इसलिए परमात्मा ने कहा ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये तना समझो, ये तो अक्षर पुरुष है। और सर पुरुष वाकी डार और तीनो देवा शाखा है, ये पात रूप सद सारे रजगुण ब्रह्मा जी, सदगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये तो शाखा है इस पेड़ की, और ये इनका पिता है सर पुरुष ज्योत निरंजन, और ये अक्षर पुरुष तना है, और ये मूल मालिक, ये परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष है, ये कबीर साहेब है। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारे, निरंजन कहो, सर पुरुष कहो, काल कहो, और तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसारी। तो पुणात्मा इसमें क्या स्पष्ट किया है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जा, 15वें अध्याय के 4th श्लोक में, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण में हूं, और जिस परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, यानी जिससे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, और मैं उसी की शरण हूं, केवल उसी की पूजा करनी चाहिए और की नहीं। कंसेप्ट हुआ क्लियर? गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य किसी भगवान उस सर्वशक्तिमान की साधना करने को कहता, जिससे ऐसी भक्ति मिलेगी, ऐसी गति मिलेगी, फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में दो पुरुष बताए हैं, एक सर पुरुष एक अक्षर पुरुष। ये देखिएगा, अपने सदग्रंथों में अनमोल खजाना भरा पड़ा है, और ये आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाते रहे हमारे धर्मगुरु, इन्हें बैठा बैठा दिया, हमारे पूर्वजों का सारे भूत बनवा दिए, ये वहां धक्के खुआ तीर्थों पे, वहां जाओ दान कर दो, उनका मोक्ष हो जाए। मोक्ष तो इस ज्ञान से होना था जो गीता में लिखा हुआ है। अब देखो ये श्रीमद् भगवद गीता है, अब इसके अंदर आपको दिखाते हैं अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16 और 17। ये देखिएगा, ये 15वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता, और यहां से वो श्लोक है 16। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके सर च अक्षर एव च सर्व भूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। इसका अर्थ यहां कराया इन्होंने, इस संसार में नाशवान और अविनाशी, अक्षर माने वैसे अविनाशी होता है, अक्षर अविनाशी, ये दो प्रकार के पुरुष हैं, दो प्रकार के पुरुष माने प्रभु हैं, और संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है, जीवात्मा किसी की मरती नहीं, ये तो अंडरस्टूड है। अब इसका भावदास समझाएगा, इसमें क्या लिखा है कि सर पुरुष और अक्षर पुरुष ये दो प्रभु प्रसिद्ध हैं, दो भगवान, दो स्वामी। अब सर पुरस्कार तो सीधा ही नाशवान है, सर माने नाशवान, अक्षर इसको क्यों कहा, और फिर 15वें अध्याय के अगले 17वें श्लोक में इसको भी रिजेक्ट किया है, अक्षर होते हुए भी, अक्षर उच्चारण करके भी इसको रिजेक्ट कर दिया। ये निष्कर्ष निकाला जाएगा क्योंकि तत्ववेद है, तत्व ज्ञान से समझा जाएगा। अब क्या बताया है कि ये दो प्रकार के पुरुष हैं, एक सर पुरुष है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये काल है, ज्योत निरंजन है, और एक अक्षर पुरुष है, वो 7 संख ब्रह्मांड का मालिक है, वो अक्षर पुरुष है, उसकी आयु बहुत लंबी है, इसलिए उसको अक्षर कहने लगे। और जो परम अक्षर ब्रह्म है, जो पूर्ण परमात्मा, वो अन्य है, इन दोनों से भी अन्य है, और वो ओवरऑल कंट्रोलर है, सब ब्रह्मांडों का रचयिता है, सबका मालिक है, इस 21 ब्रह्मांड काल के, 7 संख ब्रह्मांड इस अक्षर पुरुष के, और अनंत ब्रह्मांड है, उन सब का वो कुल मालिक है, वो सबका दाता है, सबका स्वामी है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब देखना, ये गीता जी अध्याय नंबर 15 का हमने 16वां श्लोक पढ़ लिया। इस संसार में सर पुरुष और अक्षर पुरुष कहना दो भगवान है, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी और इनके शरीर सब नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी है। और 17वें में क्या कहा है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, पुरुष माने परमात्मा, ब्रह्म कहो, भगवान कहो, प्रभु कहो, उत्तम पुरुष तो अन्य है, इन दोनों से और है, सर पुरुष और अक्षर पुरुष है। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदारते है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। यह लोक चरम अविश्य विभर्ति जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, ये स्पष्ट कर रहे हैं अपने व्यवहार में, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा, इस प्रकार कहा गया। अब ये संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है ये है वो उत्तम पुरुष है तू अन्य, और ये परम अक्षर ब्रह्म कहलाता है, इसको परम अक्षर पुरुष कहो, और ये वास्तव में अविनाशी है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता कहता है, जिसने मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लिया के तत्वदर्शी संत की खोज करो, वो बताओगा परमात्म तत्व के बारे में उसकी सारी महिमा। तो जो उसके पश्चात जो परमात्म जो भक्त श्रद्धालु जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, इस संसार के किसी भी इस नकली सुख की डिमांड वो नहीं करते, तो वो तत्परम से और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हैं। देखिएगा फिर श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अब देखिएगा 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7वां और नीचे आइए, ये 29वां श्लोक है इसका, यहाँ पर है ये संस्कृत मूल पाठ। जरा मरण मोक्षाय, जरा माने वर्धवस्था, मरण माने मृत्यु, मोक्षाय माने छुटकारे के लिए, माम आश्रित है मेरे इस ज्ञान के आश्रित होकर के, यतन्ति ये जो प्रयत्न करते हैं, ते ब्रह्म तत्विदु वो उस तत्ब्रह्म को जानते हैं, कृष्णम अध्यात्म यानी सारे अध्यात्म से परिचित है, अध्यात्म ज्ञान से, और कर्म से अखिलम और सब कर्मों से वो परिचित है। इसका अनुवाद यहाँ किया है, जो मेरे शरण होकर जरा माने वर्धवस्था मरण माने मृत्यु से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष वे भक्त तत्ब्रह्म, ये तत्ब्रह्म उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान को और तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अब पुणात्मो इसे स्पष्ट कर दिया कि जो व्यक्ति इस नकली सुख को भूल चुके हैं और जरा माने वृद्धावस्था के कष्ट को, पुणात्मो इस जीव के ऊपर वृद्धावस्था एक बहुत बड़ा अभिशाप है, इतना दुख इसके अंदर होता है, लेकिन जो परमात्मा कबीर जी की शरण में आ जाएगा पुण्यात्मा, घबराना नहीं, आपका वृद्धावस्था ऐसे कटेगा ना फूल की तरह, लेकिन जब तक सतभक्ति नहीं करते वो दुखी रहा करें, लेकिन फिर भी वृद्धावस्था तो वृद्धावस्था ही है, ये तो दुख तो है ही, कष्ट है, लेकिन परमात्मा की शरण में हल्का हो जाएगा, ये 30 बड़क कम लगेंगी। तो कहने का भाव यह कि फिर वो भक्ति करके यहां से पीछा छुटवाना है, तो वो व्यक्ति यहाँ इस दोनों कष्टों से खूब परिचित है, जन्म और मरण के दुख को और वृद्धावस्था के, इसलिए वो केवल जरा और मरण से ही छुटकारा पाने के जो प्रयत्न कर रहे हैं, वो व्यक्ति तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं, तत्ब्रह्म से ही गॉड, उस परमात्मा से और सारे दात्म ज्ञान से सब कर्मों से, कि ये क्या चक्कर है, स्वर्ग में गए फिर आगे, फिर राजा बने फिर गदा बन गए, व्हाट इज दिस, तो ये परिचित हो चुके हैं, वो ही उस साधना को कर रहे हैं। तो अर्जुन ने फिर पूछा, हे भगवान 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, फिर बताओ वो भगवान ऐसा कौन सा है जिसके मैं जहां इतना सुख है जिसके पाने के लिए फिर यहाँ की डिमांड सब छूट जाती है। अब देखिएगा, अब यहां पढ़ रहे थे ये अंतिम 29वां श्लोक आपने पढ़ा कि जो उस ब्रह्म को संपूर्ण अध्यात्म को जानते हैं, कर्मों को जानते हैं, जो मेरे शरण होकर जरा और मन से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो ये 30वां है, ये कहता जो मुझे जानते हैं तो मेरे को प्राप्त होते हैं, इसका इतना सा यहाँ 8वां अध्याय ये सामने ही है, इसके प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्चते, हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, वो तत्ब्रह्म है क्या, अब इसका उत्तर तीसरे श्लोक में दिया है, श्रीमद् भगवद गीता के आठवें अध्याय के और तीसरे श्लोक में। वह परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है वो अपनात्मा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जो कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक त्रयम् आविषय वर्ती अवैश्वर है, वो उत्तम पुरुष सही परमात्मा श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से अलग है, भिन्न है, वो कोई और है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, जैसे संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है वो मूल मालिक है, सत्य पुरुष है, उससे सबको आहार मिलता है, सबका धारण पोषण करने वाला वही है। तो आठवें अध्याय के अब तीसरे श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, ये गीता ज्ञान दाता से अन्य है। अपुण आत्मा, अब गीता ज्ञान दाता ने स्पष्ट कर दिया, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कि मेरा तो केवल एक ओम अक्षर है, क्योंकि ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 के और श्लोक नंबर 13 में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मां मनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमां गतिम। इन्होंने थोड़ा सा गलत किया यहां से, ओम ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ है, और उच्चारण करता हुआ मूल निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता हुआ पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब इसका अर्थ ये है, ये गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरा एक ओम अक्षर है मूल ब्रह्म का, और इसकी साधना करता हुआ जाता उसकी परम गति होती है, ओम नाम से जो परम गति होनी है वह ब्रह्म लोक प्राप्ति है, ब्रह्म लोक में गए प्राणी फिर वापस आते। आठवें अध्याय के और 5 से लेकर 10 तक, 5 और 7 में तो ये अपनी सतीथि बताता है कि मेरी भक्ति कर, मुझ में आश्रित हो और देवताओं की भक्ति छोड़ दे तो मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध तो करना ही पड़ेगा। अपने आत्मा जहां युद्ध करना है तो शांति कहा, इसलिए इसने 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, यानी वहां जाने के बाद सब झंझट मिट जाएगा, ना युद्ध करना ना कुछ करना, अगर मेरी शरण में रहेगा तो युद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा। और युद्ध करनी यानी शांति की, अब पांडवों को शांति हुई, 36 वर्ष राज किया, फिर हिमालय में जाकर गड़के मर गए तपस्या करके और फिर नरक में डाले गए, और इसलिए कहा कि मैं उसके बारे में जानता नहीं, तत्वदर्शी संत की खोज कर ले और उस संत के अनुसार तुम साधना करोगे तो परम शांति को नहीं परम सुख को प्राप्त होगे। अब 5 से लेकर 8वें अध्याय की गीता के और 10 तक श्लोक आपके रूबरू कराता है, देखिएगा 10 तक 8वें अध्याय का। अब यहां 5वां श्लोक है, इसमें कहा कि जो पुरुष अंत काल में मुझे ही श्रमण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वह मेरे स्वरूप को, स्वरूप नहीं है ये मद भावम, मेरे भाव में को प्राप्त होता है, मेरे पास आसक्त रहता है, इसमें कोई संशय नहीं। फिर 6वें मत एक कॉमन सी बात बताई है कि अंत समय में जिसकी जिसमें आस्था रहती है अंत समय में उसी को प्राप्त होता है।